प्लेटफॉर्म। चैतन्य महाप्रभु जब सो गई नहीं चाहते हुए भी सो गई, जैसे हरिनाम करते हुए हम लोग सोचते हैं कि न सोए तो अच्छा सो जाते हैं,
उसी समय नींद आ जाती।
कोई कोई हरी हरी कथा सुनते सुनते सोचते हैं कि नहीं सोना अच्छा है, फिर भी सो जाते हैं। ऐसे ही जबरदस्ती सुला दिया और महाप्रभु उसके तरफ में एक बार देखा और चल दिया। रास्ते में विलंब क्यों कर दिया, ट्रैफिक में फंस गए। हारमोनियम को यहाँ पर दे दीजिए। ठीक है, बैठिए बैठिए। महाप्रभु जी वहां से निकले, दरवाजे पर मैया खड़ी है, लेफ्ट हिज वाइफ, शी वाज इनफॉर्मली कुड नॉट टेक हरसेल्फ। व्हेन ही केम ऑन द गेट, जब वो दरवाजे पर आई, देखा जी मैया रोते रोते उसके आंसू सूख गए हैं, लकड़ी की भांति हो गई है, जीवित है कि मरी हुई कुछ पता नहीं, समझ रही है ये हमारा बेटा, लाडला बेटा हमको छोड़ करके चला जाएगा और अपनी किशोरी पत्नी को भी छोड़ करके चला जाएगा, क्या होगा, सब समझ रही हैं और खड़ी हैं, आंखों में आंसू सूख गए हैं, लकड़ी जैसी हो गई है। उन्होंने महाप्रभु जी ने उसकी परिक्रमा की, कुछ बोल नहीं सकी, बस देखती रह गई, एक हाथ अंचल लेकर के बस आंखों के पास में, और कुछ न कर। महाप्रभु जी ने प्रणाम किया तीन बार, परिक्रमा की, प्रणाम किया बस, और निकल करके गंगा जी में पानी भरा था, माघ का महीना, वर्षा हो रही और जाड़ा एकदम, फिर से गंगा में कूद गए। लेफ्ट हर मदर ऑल्सो एंड देन टू गंगेस एंड जंप अप इन गंगेस। इट वॉज सो कोल्ड बट येट ही जंप्ड अप, ठिठुरते हुए पानी में कूद गए, कृष्ण कृष्ण कहा और बस, और तैरते तैरते वहां से 10-15 माइल दूर कटवा में पहुंचे, कंटक नगरी, वहां जाकर के संन्यास किया। इधर रूप सनातन जी ने सुना, वे हुसैन साहब बादशाह बंगाल का, उसके प्रधानमंत्री और प्राइवेट सेक्रेटरी, प्रधानमंत्री थे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी उसके प्राइवेट सेक्रेटरी थे, रूप गोस्वामी अपने छोटे भैया जीव गोस्वामी के पिता अनुपम के साथ में पहले घर छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया और अपने सर्वस्व घर में जाकर के दो भाग कर दिया अपने धन का, आधा भाग दान कर दिया, आधा भाग रखा, आधा भाग का फिर आधा घर घर वालों के लिए दिया और जीव गोस्वामी की शिक्षा इत्यादि के लिए रखा, इनका पालन पोषण कैसे होगा, और इसके बाद में उस समय के लिए 10,000 असर थी सोने की, किसी बनिए के पास में रख देना जी, हमारा भैया सनातन जी जेल खाने में पड़ा हुआ होगा, वो जैसे तैसे निकल करके चले गए। जब यहाँ से चल रहे थे और महाप्रभु जी इसके पहले संन्यास लेकर के शांतिपुर से होते हुए चले गए पूरी जगन्नाथपुरी, और वहां से हाय वृंदावन कहते 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 रह नहीं सके, वृंदावन के लिए चले। और जंगल से जो कोई आदमी न ऐसा मिले जो हमको बाधा दे, मच्छर काट रहे हैं, कभी सिंह भालू इत्यादि मिल रहे हैं, हिरण मिल रहे हैं, और हरी बोल करते जाते हैं, शरीर की सूझबूझ नहीं, सिंह भी उनका स्पर्श पा करके हरी बोल कर सिंह भालू सभी एक साथ में चल रहे, सिंह भालू इत्यादि खरगोश और हिरण भी साथ में चल रहे, हिरण के ऊपर में आक्रमण नहीं कर रहे, उनका स्वभाव ही एकदम बदल दिया, क्योंकि ये स्थिति देख करके पत्थर भी पिघलने लग गए, जहाँ पैर रखते उनका छाप निकल जाता है, ऐसी उनकी स्थिति हो गई। चलते चलते जब प्रयाग में पहुंचे, प्रयाग से होकर के वृंदावन में गए महाप्रभु जी, वृंदावन में 12 वनों में भ्रमण किया, यमुना जी को देखते ही बस उसमें कूद पड़ते रोक नहीं पाते, भावावेश हो जाते। उनके साथियों ने देखा जैसे यहाँ रहेंगे तो कब न जाने अकेले कूद पड़ेंगे और कहीं अपने शरीर का अंत न कर दें, चला की चतुराई से किसी प्रकार से उनको वृंदावन से बाहर निकाल करके अब जा रहे हैं पुरी में। वृंदावन में उद्दीपनाएं हैं, उद्दीपना मैंने क्या, यमुना है, गिरिराज गोवर्धन है, बंसी भट है, भांडीर भट है, सेवा कुंज है, कालियत है, सब कृष्ण की लीलाओं के स्थान है, बस देखने से उद्दीपना आती है और उसी भाव में मग्न हो जाते हैं, इसलिए लोग पहचान न लें कि यही कृष्ण है ये, इसलिए इस डर से महाप्रभु जी को वहां से छुड़ा लाए। महाप्रभु जी स्थान को छोड़कर के पूरी लौट रहे हैं, आने के समय में प्रयाग में जहाँ गंगा जमुना सरस्वती मिलती है वहीं पर उधर से रूप गोस्वामी संसार छोड़ करके आ रहे हैं और इधर से महाप्रभु वृंदावन से लौट करके आ रहे हैं, दोनों का मिलन वहीं पर हुआ। एक पैसा भी साथ में नहीं, आजकल तो किराया चाहिए चलने के लिए, उस समय तो रेलगाड़ी भी नहीं थी, हवाई जहाज भी नहीं थी, कोई साधन नहीं था, इसलिए पैसे की जरूरत नहीं होती थी, और भोजन के लिए उस समय के जो तीर्थ में भ्रमण करने वाले होते अतिथि साधु संत कुछ रखने की जरूरत नहीं होती, जहाँ जाते वहीं पर कुछ मांग लेते बस खा लेते, और उस समय के लोग बड़े दयालु होते थे, अतिथियों का पालन पोषण करते, जिसके घर में चले जाते आज अहोभाग्य समझता, इसलिए कोई समस्या अधिक नहीं थी, बस लोटा और रस्सी और एक कपड़ा बस रख लेते और चलते थे, फिर घर में लौटेंगे ही इसकी कोई जरूरत नहीं है, लौटेंगे ही, अतिथि में निकल गए, हिमालय इत्यादि में चले गए, लोग देखते दो चार पांच वर्ष में नहीं लौटे तो उनका सत्कार कर देते, समझ जैसे जैसे ये चले गए। महाप्रभु जी के हमारे रूप गोस्वामी के पास में कुछ भी नहीं, महाप्रभु जी भी गए तो उनके पास में कुछ नहीं, महाप्रभु का जीवन ऐसे सुनने में आता है, एक दिन जा रहे थे उसी रास्ते से कृष्ण कृष्ण करते हुए, बन के साग को लाए, उसी को सिद्ध कर दिया नमक दे करके, वही खा करके सिद्ध, और कृष्ण कृष्ण कर रहे। उन्होंने पास के बलभद्र भट्टाचार्य से पूछा, तुम्हारे पास में कुछ मुख शुद्धि है, मुख शुद्धि जानते हैं आप, सौंफ अथवा सॉल्टेड होता है वो हर्रे या और कुछ बना करके रखते हैं, थोड़ा सा ले लेते हैं, कुछ है कहाँ है, क्या है? हर्रे का टुकड़ा। माँ कभी पित हो सकती है, हर्रे नहीं होता। सब रोगों को दूर करने वाला हर्रे, जिसको बीड़ी इत्यादि की आदत नहीं छूटती हो और कोई चीज बस हर्रे थोड़ा सा लेकर के खा दे, शरीर को भी ठीक रखेगा, मुख को भी ठीक रखेगा, सब प्रकार से ठीक रहेगा, हजमी इत्यादि से भी। उन्होंने कहा जी हमारे पास में दो चार टुकड़े हैं, तो एक टुकड़ा दो तो ले लिया। दूसरे दिन फिर भोजन के बाद में कहा जी कुछ है तो है, क्या है? वही हर्रे। अरे तुमने रखा है इसको संग रख, तो क्या भजन करेगा, इसको फेंक दे। फेंकवा दिया हर्रे तक को भी, कल के लिए नहीं रखेंगे तो फिर भजन क्या करेगा, भगवान के ऊपर में विश्वास नहीं। ऐसा आदमी निष्कपट होकर के भगवान का भजन कर सकता है। He will translate. Chaitanya Mahaprabhu left his home and went to Puri, and after taking renounce order, he wanted to come to Vrindavan. And through Jharkhand, very dense forest, where animals, wild elements were so much, and Hare Krishna singing, and he was coming. He has nothing with him. कल के लिए क्या रखा, क्या भोजन करेंगे, ये भी नहीं। ऐसे व्यक्ति को निष्किंचन कहते हैं। तो रूप गोस्वामी से जब मिले, रूप गोस्वामी भी ऐसे ही कुछ भी एक पैसा नहीं अपने लिए रखा। वहां दो चार दिन रख करके उन्होंने उनसे कहा देखो भगवान की भक्ति का रस बहुत गंभीर, आर पार और छोर किनारा रहित है, उसमें कोई किनारा नहीं है। उसका इस सिंधु का संसार के ये सब समुद्र हम लोग एक दिन में 8 घंटे में पार कर गए। कहाँ अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, सब कुछ पार कर गए। किंतु उसको पार करना बड़ा कठिन है भक्ति का रस। तो भक्ति का रस जो है ये समुद्र आर पार रहित बहुत गंभीर दीप बहुत विचार युक्त है। मैं तुमको एक दो बूंद चखाना चाहता हूं, सब नहीं, एक बूंद भक्ति रस का समुद्र का एक बिंदु। और उनसे संक्षेप में भक्ति रस का सूत्र उन्होंने बतलाया। चैतन्य प्रभाव में व्हेन ही केम टू प्रयाग, after taking darshan of Vrindavan, he was returning, and the way he met to Rupa Goswami. He was niskinchan, niskinchan, you know, having not a single farthing, not a single rice or anything. What he will take in evening, nothing. And he met with Chaitanya Mahaprabhu. And Chaitanya Mahaprabhu telling that this worldly oceans is has some what kya sorry bar iska hai
limit
we can cross, but bhakti ras is endless, so deep. I'm telling something for you, one drop I'm giving you bhakti ras. And he began to tell teach Srila Rupa Goswami. रूप गोस्वामी को उन्होंने बतला रहा भक्ति रस का समुद्र का एक बिंदु देने से ही जीवन प्राप्त हो जाएगा। जिसको अनुभूति नहीं है इस प्रेम रस का वो क्या देंगे, कुछ अनुभूति होनी चाहिए। देने वाला कौन कैसा होना चाहिए, नारद गोस्वामी जैसा, सुखदेव गोस्वामी जैसा होना चाहिए, तब वो दे देंगे। हम लोग शास्त्र से उदाहरण दे करके कथा कह करके उसके चित्त को निर्मल बनाएंगे, भक्ति रस थोड़ा सा दे सकते हैं। और वो लोग कैसा ऐसे हाथ रखते हैं, जाओ तुमको भक्ति रस हो जाओ, एक दृष्टि से देखेंगे और उसके अंदर में भक्ति रस संचार कर देंगे, जाओ भक्ति हो जाए, कह देंगे बस हो गया। नारद जी ने कहा जी तुम मर जा तो बस, तू पेड़ हो जा तो पेड़ हो गया। और किसी को कह दिया तुमको भक्ति रस आ जाए, बस एकदम कृष्ण कृष्ण कह करके नाचने लग गया, आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। ऐसा कोई महापुरुष हो तो हो सकता है। महाप्रभु जी बतलाने लगे, संसार में बहुत तरह के प्राणी हैं, 84 लाख प्रकार के प्राणी, उनमें दुर्लभ है मनुष्य। अभी हम लोग सिंगापुर में गए, सिंगापुर के पास ही में समुद्र के बीच में एक टापू है छोटा सा, और 2-4 मील लंबा 2-4 मील चौड़ा होगा, उसको ऐसे सजा रखा है और उसमें तरह तरह के ऐसे प्रदर्शनी बनाया है। $100 लेते हैं जाने का, और आदमी जाता है, तरह तरह की मछली, हजारों लाखों प्रकार की मछली कैसे उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है, जीवित चल रही है, तरह तरह की, लाल नीली पीली काली मोटी पतली कैसी कैसी, सांप जैसी कैसी कैसी, अद्भुत। तो वैसे ही करोड़ों करोड़ों मनुष्यों के जीवों में से 84 लाख योनियों में से 4 प्रकार के मनुष्य हैं, 4 लाख प्रकार के मनुष्य होने पर भी, हाथ पैर होने पर भी पशु के समान है, सभ्यता से कोई भी संबंध नहीं। सभ्यता भी जिसमें है तो ऊपर की, जैसे कि पाश्चात्य देशों में सिविलाइजेशन दे आर इन वेस्टर्न कंट्री बट नॉट कृष्ण भक्ति। सिविलाइजेशन किसको कहते हैं, सिविलाइज्ड सभ्य, ऊपर से खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए और अच्छी तरह से ऊपर से देखने में भीतर काला, धोखा, राजनीति, डुप्लीसिटी, हिप्लीसिटी, क्या क्या, द्वेष, दूसरे के प्रति शत्रुता, ये भीतर में और ऊपर से बड़ा दिखते हैं। कल जो शत्रु थे, 10 वर्षों से शत्रु थे, कल देखिए भारत बस में सब लोग अब किसी से संधि करके एक दिल्ली की गद्दी पर बैठना है। भीतर में कैसा, बाहर में कैसा। तो ऐसे सभ्यता माने अपने दुर्गुणों को छिपाकर ऊपर से अच्छा बनने के तरीके को सभ्यता आजकल कहते हैं। वो कहते हैं ना, जैसे मुख में राम बगल में छुरी, मुख में राम बगल में छुरी, ये सभ्यता है हमारी। पहले की ऐसा नहीं था, शरीर से जैसा भी हो आत्मज्ञान होता था, सबसे मित्रता होती थी, किसी के प्रति विद्वेष नहीं, बड़े सहनशील होते थे, वो लोग सभ्य हैं। और जो भीतर से कपटता और ऊपर से मित्रता का व्यवहार रखते हैं वो लोग ठग हैं, उनका हृदय काला है, वो सभ्य नहीं। महाप्रभु जी कह रहे हैं उनको 84 लाख योनियों में से ये 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। अभी हम लोग कहां कहां गए देखा, कैसे कैसे आते हैं, उनकी तुलना में हम लोग काले कहे जाएंगे। हम सभी लोग काले हैं, ये जो दिख रहे हैं ये काले, जो गोरे भी हैं वो भी काले, चाइनीज और घर में क्या कितने एकदम पीले पीले सोने का रंग जैसा, भक्ति से कोई संबंध नहीं। तो ये लोग भी मनुष्य ही कहलाएंगे, जो एकदम असभ्य हैं, जो अपने माता पिता को बूढ़े अवस्था में, आसाम में ऐसे प्रदेश हैं जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, देखते हैं कि अब ये रुकना रहने लगे, अब मरने वाले हो गए, उनको खूब जबरदस्ती खिलाएंगे मालपुआ इत्यादि, और उसको छप्पर पर फेंक देंगे, वो लुढ़कता हुआ आकर के 2-4 बार गिरेगा, मर जाएगा, फिर आग पर उसको सेक लेंगे और काट करके सभी लोग खाएंगे। ऐसे लोग भी आसाम में, भीतरी आसाम में मनुष्य के जैसे हाथ पैर हैं। तो दुनिया में ऐसे भी अभी कुछ लोग हैं, कुत्ते को खिला करके और ऐसे आग पर सेक करके और बस काट करके खाएंगे, ये लोग भी मनुष्य ही हैं। जो कुछ आधे सभ्य हैं वो लोग भी मनुष्य हैं। उन लोगों में वो श्रेष्ठ हैं, जिनको कुछ ज्ञान का विकास है, ये लोग मनुष्य शब्दवाच्य हैं। इनमें वर्णाश्रम धर्म को मान करके माता पिता के प्रति आदर करते हैं, गुरुजनों का आदर करते हैं और लोगों के साथ में प्रीति का व्यवहार रखते हैं भीतर से, ये लोग ठीक है। किंतु इनका भी जीवन बेकार का है यदि कृष्ण भक्ति कुछ नहीं है। कुछ लोग उनमें से ऐसे होते हैं देवता देवी को मानते हैं, तरह तरह के पहाड़ों की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं, वो नहीं वालों से अच्छे हैं, कुछ तो लेते हैं। सूर्य की पूजा करते हैं, अभी सिंगापुर में हम लोग गए, मलेशिया में गए, वहाँ पर सूर्य की पूजा होती है, देवताओं की पूजा होती है, वहाँ भगवान की पूजा नहीं। वहाँ पर बराह देव को देखा, नृसिंह देव को देखा, किंतु उनको वो पूजा वो नहीं समझते, वो देवता समझते हैं, उनको मंच भी देते हैं भोग में। तो अभी ये वृत्ति जो देना, इसमें वृत्ति जो देने की है और अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, पूजा करते हैं, ये भी कुछ प्रशंसा देते हैं। यही यदि शुद्ध रूप में शुद्ध भक्तों का संग हो तो भगवान की भक्ति में आ जाता है। जो माता पिता गुरुजन देवता देवी कुछ नहीं मानते, भले ही पहाड़ को भी मानते हैं, पर्वत को भी, वृक्ष को भी देवता मानते हैं, बोंगा उनको कहते हैं, ईश्वर मानते हैं, तो अभी कुछ ठीक है, मानते तो कुछ है। इनसे भी श्रेष्ठ वो हैं जो भगवान के अवतारों को मानते हैं और आत्मा को मानते हैं। जो आत्मा को मानते हैं, ये आत्मा परमात्मा का अंश है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये आत्मा ही परमात्मा है। ये दो प्रकार के विचार मानने वाले उन लोगों में से श्रेष्ठ हैं। उनसे श्रेष्ठ हैं कौन? वेद को मानते हैं, उपनिषदों को मानते हैं, पुराणों को मानते हैं और भगवान का भजन भी करते हैं, दूसरे देवताओं का भी भजन करते हैं। और उनसे श्रेष्ठ कौन है? जो भगवान का भजन। उनसे भी श्रेष्ठ कौन है? जो समस्त भगवानों के आधार सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, कृष्ण को मानते हैं। इनसे भी कौन श्रेष्ठ है? जो श्रीमती राधिका का भजन करते हुए कृष्ण का भजन करते हैं, राधा कृष्ण जुगल की, इनसे भी कुछ श्रेष्ठ है। वो क्या? रूप मंजिल जी के अनुगत्य में, रूप गोस्वामी के अनुगत्य में किशोर किशोरी दोनों का भजन करते हैं, किंतु किशोरी के तरफ में झुके हुए अधिक, और यही भजन की चरम अवस्था है। तो वही बतला रहे हैं, भजन करते करते मनुष्यों में जो संसार में भ्रमण करते हैं, भ्रमण करते 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 भ्रम तो जदा अपवर्ग, श्रीमद्भागवत में चैतन्य चैतामृत में भी कहा, इस संसार में भ्रमण करते 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 किसी कारण से पूर्व जन्म की अज्ञात सुकृति से, ज्ञात सुकृति से किसी प्रकार साधुओं का संग हो गया। कौन सा संग? जो यथार्थ में साधु है, यथार्थता साधु है, शास्त्रों के तात्पर्यों को अनुभव करने वाला है, भगवान का कुछ अनुभूति है भगवान की, और संसार से अपने आप विरक्ति हो गई, ये तीन लक्षण हैं। भगवान के प्रति यदि उसकी रुचि हो जाएगी तो संसार अपने आप उसके लिए फीका हो जाएगा, कर्तव्य के लिए करेगा संसार, किंतु भगवान के प्रति उसकी रुचि हो जाएगी, आसक्ति हो जाएगी, ऐसे लोग साधु हैं। सब कृष्ण हैं, उनको उनकी आराधना करने वाले साधु हैं। जो कृष्ण की आराधना नहीं करते, भगवान की आराधना नहीं करते, वो साधु शब्दवाच्य नहीं। आजकल साधु वेश में जितने हैं, अधिकांश सब ठग हैं, भागवत ऐसा कहते हैं, धर्म प्रज्ञित कई तो वो अस्त्र, जो धर्म की शिक्षा देने वाले हैं, भागवत कहती है कि ये अधिकांश लोग ठग हैं, ये लोग रुपये पैसे प्रतिष्ठा इत्यादि में बह जाते हैं और शुद्ध रूप में भगवान कृष्ण का आराधना नहीं कर पाते। इसलिए संसार में भ्रमण करते 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 कोटि कोटि योनियों में भ्रमण करते हुए कभी कीट पतंग, कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय, कभी शूद्र, कभी राजा, कभी प्रजा, कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी गंधर्व, कई कीट पतंग, कई मछली, कभी कुछ, इस तरह से कोटि कोटि जोनों में भ्रमण करते 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 मनुष्य जीवन में आने पर यदि साधुओं का किसी कारण से संग हो गया, कारण माने क्या, पूर्व जन्म की सुख की यदि हो गया तो वो क्या करते हैं, उनके हृदय में भक्ति का पौधा रोपण करते हैं, लगा देते हैं। एंड लेक्स योनि यूनो क्या
ओम ओम
इन एनी वे बाई नोइंगली अनोइंगली इफ देर इज सम स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन ऑफ द पास्ट बट ही विल हैव ए सन ऑफ साधु एसोसिएशन ऑफ साधु रियल साधु ही विल गिव दिस सीड ऑफ भक्ति लता, भक्ति लता का बीज उसमें बोएगा। वो बीज क्या है, कृष्ण की भक्ति करने से हमारा जीवन के जितने भी कार्य हैं पूर्ण हो जाएंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, इस चीज को जीवन उसके हृदय में रोपण कर देते हैं। ये बीज है देसी डब भक्ति क्रीपर इज स्पर्टिंग टू सर्व कृष्ण
डिजायर
सर्व कृष्ण दिस इज देसी। When a sprout comes, then it is called Shraddha. More two leaves going on Nishtha, Ruchi, Asakti, Bhav, like this. अब ये लता जब उठती है किसी क्षेत्र में, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन, महाप्रभु जी कर रहे हैं, ये श्रद्धा दो तरह की होती है। एक तो प्रहलाद महाराज जी का चरित्र, रामचंद्र जी का चरित्र और सब देवहूति और कपिल देव जी का संवाद और सब कथाओं को सुन करके उसके हृदय में आता है कि भाई संसार में यदि भगवान का भजन नहीं किया तो माता पिता और गुरुजन पति पुत्र और ये सब के प्रति कर्तव्य निभाने पर भी हमको नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए जिसने हमारा जन्म दिया, विश्व की सृष्टि करते हैं, स्थिति पालन करते हैं, उनके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है। जिस माता पिता ने जन्म दिया, दिन रात बच्चे तंग करते हैं, माता दिन रात जग कर उसके मल मूत्र को धो करके और कितना गंभीरता के साथ में, सहनशीलता के साथ में बच्चे का पालन करती है, मैया समझती है, बेटा नहीं समझ पाता। यदि समझ लेता है थोड़ा सा तो उसकी कभी भी अवज्ञा नहीं कर सकता। तो कृष्ण हम उनके संतान हैं, कितना प्रकार से हमारा वो पालन पोषण करते हैं, हमें ये विश्व की सृष्टि रचना इत्यादि करके कैसे उसका पालन करते हैं, कैसे सद्बुद्धि इसमें देते हैं, कैसे ये शरीर ये दिया, माता के गर्भ में पालन पोषण किया, ये बुद्धि वृत्ति को दिया, अभी तक हम जीवित हैं, मर नहीं जाते, वो सब पालन पोषण करते हैं। ऐसे भगवान के प्रति भी हमारा कर्तव्य है, यदि नहीं करते तो जरूर नरक में भोग करना पड़ेगा, इसी जन्म में नरक भी भोग करना पड़ेगा। इसलिए हमारा क्या कर्तव्य है, भगवान का भजन, ऐसा समझ करके जो भजन करते हैं उनकी श्रद्धा को शास्त्र अवधारणामयी श्रद्धा करते हैं, शास्त्र के अनुसार कर्तव्य से। पुत्र का कर्तव्य माता पिता की सेवा करना है, यदि नहीं करता स्वर्ग में जाने पर भी अपने शरीर का मांस खाना पड़ेगा। वाल्मीकि रामायण में ऐसा देखने को मिलता है, किंतु भगवत भक्ति करने से यदि सबको छोड़ करके करता है तो किसी का ऋणी नहीं, किसी का भी ऋणी नहीं राजा। किंतु ऐसे भक्त लोग भी माता पिता का आदर करते हैं। तो हमारे रघुनाथ दास रूप गोस्वामी जी बतला रहे हैं कि भक्ति लता का बीज वपन करते हैं और ये श्रद्धा दो प्रकार की, एक पहली हुई वो कर्तव्य वाली शास्त्र की के अनुसार में, भजन नहीं करने से माता पिता का, जैसे हम ऋण रहते हैं, भगवान जो जगत की सृष्टि करता है, हमारी आत्मा उससे निकली है और उसमें कैसे पुष्ट होती है, कैसे हम हमारा जीवन है, कैसे बुद्धि आज क्या दिया, इसलिए उनका जो भजन नहीं करेगा जरूर उसको दुख कष्ट भोगना पड़ेगा, इस जन्म में भी दूसरे जन्म में भी, कोई उसको बचा नहीं सकता, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। दूसरा, पूर्व जन्म की कुछ ऐसी सुकृति है उसको ये सब चीजें अच्छे रुचकर नहीं लगती। भगवान की लीला कथाएं बड़ी सुंदर लगती, कृष्ण ने कैसे जन्म लिया, घर में कैसे मक्खन चुराते हैं, रामचंद्र जी ने कैसे लीलाएं की, कृष्ण को मैया यशोदा ने कैसे बांध दिया, जिसको कोई नहीं बांध सका उसको बांध दिया, जिनका ओर छोर किनारा इधर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं, और उसको बांध दिया और ये रो रहे हैं परब्रह्म उनकी गोदी में जाने के लिए। इन सब लीलाओं को सुन करके, गोपियों की लीलाओं को सुन करके, कृष्ण उनके साथ में नाच कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, गोपियां कहती हैं जो उठो तो उठते हैं, बैठ करने के लिए कहते हैं तो बैठते हैं। इन सब लीलाओं को सुन करके उनके हृदय में ऐसी श्रद्धा होती है, ओ मैं यशोदा की भांति कृष्ण को अपना लाला बना करके प्यार करती हूँ। कभी आता है जी मैं कृष्ण को गोपियों की भांति अपना प्रियतम मान करके उनकी सेवा करूँ, ऐसी ऐसी भावना है। इस भावना से जो श्रद्धा जन्म लेती है भगवान की लीला कथाओं को सुनकर, रसिक वैष्णव के संग में रहने से, उसको कहते हैं क्या कहते हैं, रागानुगा शब्द। शास्त्र के सुनने से नहीं होगा, रसिक वैष्णव के संग में भगवान की मधुर लीलाओं की कथाओं को सुनने से ऐसा। अब इसके लिए शास्त्र की अपेक्षा नहीं होती, किंतु कैसे वो मिलेंगे इस रूप में, उसके लिए शास्त्र में भी देखेगा, रूप गोस्वामी के ग्रंथों को देखेगा और सब शास्त्रों को देखेगा, उसके अनुसार नहीं चलेगा, वो विचार करेगा हमारी यह जो श्रद्धा है कैसे बढ़ करके निष्ठा है, कैसे रुचि हो, प्रतिदिन पर दिन वो विचार करेगा या करेगी, हमारी कल कितनी श्रद्धा थी वो पुष्ट हुई कि नहीं। एक मैया है, उसको बच्चा हुआ, बहुत दुबला पतला क्षीण मैया, आज देखा जी बहुत क्षीण है, बहुत दुबला है, सर्दी जुकाम भी हो गई है, उसके लिए चेष्टा करती है, दूसरे दिन देखती है, तीसरे दिन, चार दिन, पांच दिन, सात दिन, दस दिन, देखती है जैसे ये ठीक हुआ कि नहीं, पहले से कुछ पुष्ट हो रहा है, एक महीने के बाद में देखा कि कुछ पुष्ट हो रहा है, बड़ा आनंद हुआ, आज यदि पुष्ट नहीं हुआ तो उसका मन खराब हो जाता है, कहीं बच्चा चला ना जाए। उसी तरह से जो साधक कितना हो गया
एक घंटा हो गया है
एक घंटा हो गया, मालूम होता है तो क्या बता रहा था
मैया, वो
ऐसे साधक, वो साधक साधक नहीं है जो ये नहीं देखता कि कल हमारी श्रद्धा कैसे थी, आज कुछ पुष्ट हुई कि नहीं। Like a mother sees her child, that whether my son is some, पुष्ट का क्या,
strength
or not, he is healthy, becoming healthy or not. If he is not becoming in the same lean and thin, then she will be very sad. और देखिए कि जब कुछ पुष्ट हो रहा है, कुछ और पुष्ट हो रहा है, then she will be so happy. That child is my son, becoming healthy. उसी तरह से साधक ये विचार करेगा कि कल हमारी भगवान के प्रति जैसी निष्ठा और रुचि थी, आज कुछ कम हो गई या बढ़ रही है, ये कैसे पता लगेगा, हम पता लगेगा कैसे, पता लगेगा भागवत में बतलाया, जैसे हम खाते हैं एक एक ग्रास के साथ साथ में पुष्टि, खून निवृत्ति और तुष्टि होती है, जितने जितने ग्रास खाते जाएंगे खुदा दूर होती जाएगी, खाने की स्पृहा दूर हो जाएगी और पुष्टि भी शरीर में बल आएगा अब ऐसा हो जाए कि अब नहीं। तभी यदि कोई अच्छी चीज दे दी तो थोड़ा सा ले लिया, और उसके बाद में और कोई दिया, भाई अब ऐसे नहीं, अब भाई दे देंगे यही पड़ा रह जाएगा, एकदम चारों तरफ से ढक लेगा, नहीं अब नहीं खाए। आ कोई खा रहा है, यदि ऐसे ना हो, भूखी नहीं जा रही और खाता चला जा रहा है, तो सोचिए राक्षस उसके हृदय में प्रवेश कर गया, कोई बीमारी है। तो उसी तरह से भजन करेंगे और आत्मा संतुष्ट नहीं होगी, और सब समय वो चिंतित रहेगा, दुखी रहेगा, समझो जो वो भजन नहीं है। भजन से इसके साथ में कोई संबंध नहीं, इसलिए विचार करके देखेगा ये भजन से हमारी पुष्टि हो रही है कि नहीं, संसार से विरक्ति आ रही है कि नहीं, संसार में और आसक्ति बढ़ रही है, पैसे खूब आ रहे हैं और खूब आराम के साथ में, कभी कभी माला आ जाती है हाथ में, बस माला आ जाती है, बस छोड़ देता है, ये भजन है। इसलिए साधक विचार करेगा ये उसकी भक्ति क्रमशः पुष्ट हो रही है। अब लता में पत्ते आए, पत्ता जब आता है तो आप लोग देखेंगे जो वो गोल गोल सा कुड़ी जैसी लंबी सी टुकड़ा हुआ आता है ना, गोल सा राउंड लंबा सा, जब वो धीरे कोपल और धीरे धीरे जब उसका पत्ता खुलने लगता है तो वो चारों तरफ से पहले रूखड़ा रहता है ऊपर वाला भाग कवर, और जबकि खुलने लगता है तो उसका भीतर का कोमल भाग निकलने लगता है। अब जब ऐसे हो जाता है तो यहाँ का खूब लाल कोमल सुंदर पत्ता स्निग्ध, और इधर में तो वैसे भक्ति में पहले रूखड़ अर्थात वैधि भक्ति का पोची जाता है, इसके बाद में धीरे 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 साधु संघ के प्रभाव से उसका भीतर जब खुलने लगता है कोमल स्निग्ध मधुर सुगंधित पोची निकलती है, यह है रागानुग। अब यही बढ़ते 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 कैसे होगी, अब कल जहाँ पर प्रसंग होगा यहाँ पर बतलाएंगे, 40 मिनट से अधिक हमको बोलने के लिए जरा मना किया है, असुविधा होती है बोलने की, शिक्षा से ये 4 घंटा तक बोलते चले जाए, इसलिए कल का प्रोग्राम क्या रखा है, कभी इसमें से इम्पोर्टेंट जो बातें हैं अभी रह गई हैं, अभी तो अभी कथा में कभी बोला है, कल बतलाएंगे, कल का क्या प्रोग्राम है बतलाइए।